نحمد و صلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد آدم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الفاطم الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد گزشتہ دو مجالس میں رمضان شریف کی آمد کی تیاری کے بارے میں بزرگان دین کی اقوال کی روشنی میں کچھ عرض کیا گیا تھا، جس میں بزرگان دین نے اس بات پر اور اہمیت بیان کی ہے کہ کیونکہ یہ بہت بڑا اہم مہینہ ہے اور اتنا بڑا اہم ہے، اللہ کو کس کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جو برکتوں سے اور رحمتوں سے خالی ہو، تو ایسا نہ ہو زندگی کے اندر اللہ ہمیں نصیب فرما رہے ہیں تو ہم اتنے بڑے انعام سے اور خزانے سے اللہ تعالیٰ کے محروم رہ جائیں اپنی غفلت کی وجہ سے۔ بہت سے انسان اچھے وقت اور اوقاتوں کو اپنی نادانی سے اور ناسمجھی سے ضائع کر دیتا ہے، تو اس لیے یہ باتیں بہت اہم ہوتی ہیں جو ایسے اوقات میں پیش کی جائیں جو آنے والے وقت کے لیے مفید ثابت ہوں اور حد درجے تک اس محرومی سے ہم بچ جائیں کہ کل ہم پچھتائیں کہ کتنا بڑا مہینہ تھا، ہائے ہائے ہم ضائع کر دیا۔ جہاں تک زندگی کے تعلق ہے تو ایک عملی مشاہدہ ہے کہ روز دیکھتے ہیں کہ کیا پتہ بھی کس وقت بلاوا آ جائے انسان کا۔ آج مسجد میں ایک مشاہدہ ہے جو عام بات آپ کو خدمت کر رہا ہوں، زہر پہ نکاح ہو رہا تھا کسی صاحب کا، عصر پہ جنازہ پڑھا جا رہا تھا کسی صاحب کا۔ یہ دنیا کا ایک کھیل ہے دوستو، اب روکتے موت کو کہتے ہیں نا بھائی تو بھی کل سے تو رمضان شروع ہو رہا ہے، بیچارہ رمضان سے محروم ہو گیا، اس کی بخشش ہو جائے گی، کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنے بڑے انعامات سے پہلے سے انسان کو اللہ نے بلا لیا۔ دیکھیں آپ سوچیں گھنٹوں کی بات ہے نا، اب تو نہیں بس جانا تھا جنازہ پڑھنا، تو اس لیے ہے کہ بھائی اللہ کے بس فضل کی بات ہے، یہ ایسی چیزیں مل جائیں انسان کو، مل بھی جائیں تو سمجھ کے ساتھ مل جائے، اس میں کوئی تعین نہ ہو۔ تو پہلی چیز جو عرض کی تھی اس میں دہرا دیتا ہوں مختصرا، دوبارہ تو پورا مضمون آپ اس میں دیکھ لیں گے سائٹ پر۔ سب سے پہلی بات تو یہی تھی اس چیز پر کہ رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی، ایسی بڑی رحمت کی امت پر کہ ہم تو نہ سمجھ ہیں نا، نادان ہیں، کیا پتہ رمضان کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوبصورت طریقے سے، یعنی آخری وقت بھی جو ہے رمضان سے، یہ شعبان ہے، برکتوں سے بڑا مہینہ ہے شعبان، شب رات آپ نے بھی لی ہے وہ کم تو نہیں، اس کے آخری لمحات میں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں الرٹ کیا کہ کچھ بھی نہیں ہے جس میں سے آپ گزر کے آ رہے ہو، آگے آنے والی چیز بہت بڑی ہے، کچھ بھی نہیں، اس کے ذرہ بھی نہیں ہے شعبان، ذرے کی مثال بھی نہیں شعبان کے مقابلے۔ تو کیا زحمت ہے سرکاری دسم کی، تو فرمایا ابھی بھی الرٹ ہو جاؤ، اور آپ نے اپنے خاص معمولات میں سے ایک چیز ہمیں عطا فرمائی، خاص معمولات میں، خاص अमल था, जो इतना ख़ास अमल था कि आप फरमाते थे अपने सबसे पहले अपने घर वालों को तलकीन फरमाते थे, ये कितना अहम होगा, और फिर अपने सहाबा को सिखाते थे, पढ़ाते थे, वो कहते ये करो, दुआ की शक्ल में अमल बताया था। दुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह की मदद से जुमेरात जुम्मा हफ्ता हफ्ता हफ्ते का दिन हो गया तो खूब पढ़ रहे होंगे, अभी तो यही है, इतनी लाजवाब दुआ बताई गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो शुरू कर दी होगी आप, कोई छोटी दुआ तो नहीं है, ये निकली कहाँ से, अल्लाह किस जबान से दुआ के अल्फाज निकले हैं। मैं तो ये अर्ज़ कर दूँ आपकी खिदमत में कि इस दुआ को पढ़ने से, ये तो भूल ही जाएँ कि फ़ायदा नहीं, बल्कि ये समझें कि इस दुआ के पढ़ने से वो सब कुछ तो मिलेगा जिस दुआ में हम मांग रहे हैं, बल्कि इसका नूर, इसका फजल, इसका करम आप पूरे रमज़ान में महसूस करेंगे। पूरे रमज़ान स्कोर कर लिया आप इसके नूर से, ऐसी दुआ है। तो जानते हुए तो क्या दुआ थी जो मैंने आपको बताई थी कि भैया पहला दुआ ये थी कि जो मांगें इसको, और वो दुआ थी कि या अल्लाह मुझे, या हम सब के लिए सोचा है कि मुझे रमज़ान के लिए सलामत रखिए और रमज़ान को मेरे लिए सलामत रखिए। क्या हो सकता है यार, मुझे रमज़ान के लिए सलामत रखिए, क्या मतलब इसका कि मुझे रमज़ान नसीब हो जाए, इसकी कदर उससे पूछें जो आज जोर पे गया है बेचारा, क्या गई है मुझे बताएं, उससे पूछें इस लफ्ज़ की कीमत कि या अल्लाह मुझे नसीब फरमा दीजिए कि हाथ पांव हमारे नूटे हो जाएं, हमारा और कोई बीमारी ना लग जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, हज़ारों चीज़ें हैं। तो ये दुआ आप सब कितनी एहतियात से फरमाई कि शुरू कर दो, अभी कोई भरोसा नहीं है, रमज़ान के आने के 5 मिनट तक कोई भरोसा नहीं है कि चाँद नज़र आएगा या नहीं, चाँद नज़र आए तो फिर काम बनेगा कि रमज़ान में पहुँच गए। ये दुआ कि भाई मुझे रमज़ान सलाम, मुझे मेरे लिए रमज़ान को सलामत रखिए, रमज़ान को मेरे लिए सलामत रखिए, और फिर फरमाया कि रमज़ान सलामत रखिए, यानी क्या कि जो कुछ भी रमज़ान के अंदर अच्छे आमाल और चीज़ है, रमज़ान की शान है, वो मुझे अता फरमाइए, सुभान अल्लाह। और फिर फरमाया कि फिर रमज़ान को मेरे लिए मकबूल सलामत रखिए, ऐसी बात नहीं, जो कुछ मैंने किया है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल भी होना चाहिए, बात तो जब भी बनेगी जब अल्लाह कबूल कर लेगा, मेहनत तो जाया। तो कितना बड़ा प्रोटेक्शन दिया है इस दुआ के अंदर, तो ये एक तो पहला हमें अमल बताया था रमज़ान की तैयारी में, शुरू कर दुआ से, शुरू कर दिया सहाबा कराम ने सब। और दूसरी मजलिस में जो अर्ज कर रहा था बात में आपसे, वो थी जो बहुत अहम बात है कि रमज़ान की औकात की हिफाजत करना, रमज़ान के टाइम की घड़ियों की, ये दुआई नहीं कि भाई चलो 1 घंटा भी कोई बात नहीं, 5 मिनट खबरदार, 5 मिनट अगर नमाज के लिए बैठे हैं तो फिक्र ना करें, तस्वीर करें, कुरान को पकड़ लें, 2 सफ़े पढ़ लें, 3 लाइन पढ़ लें कुरान की, राकबा कर लें, 20 दफ़ा इसमें ज़ात अल्लाह अल्लाह कह लें, यानी खाली ना हो कोई लम्हा भी जो है, खाली ना हो। भाई ये तो खाली की बात कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा गाफिल इंसान कब होता है, सोने गई है ना, सोया जो गाफिल कहते हैं ना उसको, गफलत, तो रमज़ान के कहते हैं कि जिसने जो तैयारी कर ली रमज़ान की, और जब वो बंदा सोता है, सुने ये गाफिल आदमी क्या बताया जा रहा है हदीस में कि जब वो आदमी सोता है तो वो आला दर्जे की इबादत करता है, सोता वो आदमी, यानी ये मुकाम हो जाता है उस आदमी के। और सुने आप अजीब हदीस है कि जो आदमी सोता है वो आला दर्जे की इबादत करता है, और जो उसकी सांस चल रही है वो उसकी तस्वीर बन जाती है। आगे सुने, ये शान रमज़ान की देखें कि वो क्या बन जाती है, तस्वीर बन जाती है, और वो तो गफलत से अपने सो के उठ रहा है, और जब उठता है तो जो दुआ उसने मांग ली वो कबूल हो जाती है। आगे चले, अब ये भी छोड़, चौथे दर्जे पर उसको क्या मिलता है कि दुआ भी कबूल हो जाती है, और फिर क्या होता है, अल्लाह को इस गफलत की नींद के अंदर हमने उसकी बख्शी भी कर दी होती है। ये रमज़ान है, यकात है। तो एक गाफिल आदमी की सिर्फ सोने से इबादत बनती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के औकात के अंदर जानते बूझते उसमें इबादत करेगा तो उसका क्या मुकाम होगा, ज़ाया करना चाहिए मैं कोई बात, आज से बात सोच लें, सवाल ही पैदा तब कोई वक्त ज़ाया हो जाए। सबसे आसान तरीका किस कल्ब जारी फरमा लें, कुछ है ही चलते फिरते अल्लाह 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 जारी, हर चीज़ عبادت میں آپ لگیں, کوئی ضائع نہیں, بات بھی کر رہے ہیں تو اللہ اللہ ہو رہا ہے, تو دنیا کام تو نہیں روکتے نا بھائی, جنگیں بھی تو ہوئی ہیں اس میں رمضان میں, یہ تو نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ اس میں سارے کام چھوڑ گئے, نہیں کام بھی چلیں اور یاد بھی میری ہو, کام بھی کرتا رہے اور بیکار بھی نہ ہو, ادھر بھی کام چلے اور ادھر بھی کام چلے, اس کا نام ہے دین ہمارا, یہ بتایا جا رہا ہے. تو اوقات کی حفاظت بتائی, اس کے ساتھ ایک بتایا تھا آپ کو پچھلی مسجد سنی تھی نا, یہ بات تھی نا میرے خیال, وہ کیا تھی کہ بھائی رمضان کے مخصوص اعمال, بہت اعمال ہیں اللہ کے فضل سے, تو دیکھو جو کچھ بھی عمل ہی اللہ نے دیے ہیں, نیکی دی ہے, لیکن جو ہے رمضان کے مخصوص اعمال بیان ہوئے تھے, رمضان کے اندر خاص اعمال کون سے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں, تو وہ تو بھائی لازم کرنا ہے, ہر حالت میں کرنا ہے, اس میں سب سے پہلے سر فرشت کیا ہے, تلاوت قرآن, تلاوت قرآن جو ہے زینت رمضان, ساری رمضان کی زینت اس کے ساتھ ہے تلاوت قرآن, اس کے بعد جو ہے ذکر رحمان جس میں ہے ترقی ایمان, دوسرے درجے پہ ذکر ہر وقت ذکر ہے, اور تیسرا عمل کیا بتایا تھا بہت دوست, اب وہ کیا ہے دعاؤں کا اہتمام جس میں سارا بخشش کا سامان, تین چیزیں ایسی کمپیکٹ ہیں کہ بس پکڑ لیں, یا تو تلاوت کر رہا ہو یا ذکر الہی میں مست ہو, یہ بھی ٹھیک ہے نا, یا ذکر الہی مست نہیں ہو تو پھر دعاؤں میں مشغول ہو, اگر ان تین چیزوں میں فارغ ہو تو پھر سو رہا ہو, وہ بھی عبادت ہے اللہ کے بدل سے, عبادت یہ اعمال بتائے گئے تھے. آج یہ الحمدللہ کیونکہ رمضان کا آخری ذکر ہے ہمارا, شعبان کا, شعبان کا آخری ذکر ہے اس مسجد میں, تو یہ آخری ایک اور آپ کو ایک چیز بتائی جائے الحمدللہ سے, یہ سب چیزیں تو ہم نے کی, لیکن تیسری چیز جو تھی جو کل میں عرض کر رہا تھا, دماغ میں آئی تو بتاؤں گا انشاءاللہ, آ گئی ہے تو عرض کرتا ہوں غور سے سنیں بھی, کیونکہ جو آخری چیز ہوتا ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے ہر چیز کا, ہوتا ہے نا آخر میں, بعض کہتے ہیں نا کھانا کھاتے کھرچن دے دو, وہ کہتے بڑا عزیز آدمی اس کو کیا پتا ہے کھرچن میں کیا ہوتا ہے, بڑے چلاکڑ ہوتا ہے نا بات, نہیں جی آپ کھائیں کھائیں بعد میں کھا لیں کوئی بات نہیں, دیکھ کے نیچے سے کھا لیں, سب کچھ تو دیکھ کے نیچے ہوتا ہے سب لگا ہوا, تو یہ دیکھ کے نیچے کے لیے بات آپ کو بتا رہا ہوں, وہ کیا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ ہو گیا معاملہ, لیکن اب ایک چیز ہے کہ اب ہم یہ سوچنا یہ ہے کہ اتنی بڑی رمضان کی اتنی بڑی راتیں ہیں, برکتیں ہیں, رحمتیں ہیں, فضل ہے, نعمتیں ہیں, کیا کیا ہے, تو اس کے اندر یہ سوچنا ہے کہ بھائی جو کچھ یہ سب کچھ ہیں کوئی چیز ایسی تو نہ ہو جو رکاوٹ بن جائے ہمارے اس کے درمیان, ہم سمجھ رہے ہیں ہم عمل کر رہے ہیں, اور سمجھ رہے ہیں بہت غور کی بات ہے, کھرچن ہے نیچے والی, ہم تو سمجھ رہے ہیں سب کچھ عمل بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کو کیا پتا کہ کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے آپ کے اس کے درمیان, نہیں سمجھ میری بات, یہ ہوتا ہے اس کی مثال بہت اچھی دیتا ہوں, سورج چمکتا ہے نا, سورج سب کو روشنی دے رہا ہے, دھوپ دے رہا ہے, دے رہے نا عام میدان دھوپ بیٹھے, لیکن جیسی چھت آئے گی تو کیا ہو جائے گی, سورج اور آپ کے درمیان کیا ہو جائے گی, کتنی تیز دھوپ ہو لیکن چھت نے اس کو روک لیا, دھوپ نہیں اندر آئے گی, اسی طرح کتنا ہی بڑا عمل ہو, کتنے زوردار عمل ہو, لیکن اگر اس میں رکاوٹ آ گئی تو ختم. تو سب سے بڑی چیز تو ہے بھائی ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ رمضان کے اندر سب کچھ کریں تو کوئی رکاوٹ والی چیز نہ آ جائے, آج ہی سوچ لیں اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے, ہم نے پہلے آج ہی صاف کر دیں, کریں گے پھر پکا آج ہی صاف کر دینا, وہ دیکھ لینا ورنہ ساری محنت ضائع, جتنی بھی ساری باتیں میں نے بتائی ہیں وہ ڈھپ, اس چیز کی اس رکاوٹ کو ختم کرنا ہے ہم نے آج, یہ سوچ لیں کیا رکاوٹ ہے بھائی, یہ رکاوٹ سن لیں کہ رمضان سے جانے سے پہلے ہم نے اس کام کو ہم نے کرنا ہے, جیسے یہ رمضان کی تیاری ہے, ہو کیا ہے بندوں کے حقوق میں کوتاہی, ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں, کوئی سوچا بھی نہیں ہوگا, بس جی ہم تو تیار رمضان کے لیے جناب حجامتیں بھی کرا لی ہیں, جی ہم نے فلاں بھی کر لیا ہے, یہ بھی کر لیا ہے, قرآن بھی کھول لی ہے سب, لیکن اس پہ خیال بھی کسی جاتا ہے کسی کو, ہم نے کسی کو گالی دی تھی, میں نے کسی کا پیسہ کھایا تھا, ابھی میں اپنی بیوی کے تھپڑ مار کے آیا ہوں, ابھی وہ مجھ سے مانگ رہے تھے کوئی چیز, میں نے منع کر دیا, میں نہیں دیتا, میں نے بچہ یہ کرا تھا میں اس کو دیتا, ظلم ظلم بہت بڑی چیز ہے دوست, اس کو کیا کہا جاتا ہے, ظلم کہا جاتا ہے, یہ چیز نہیں کہ وہ آپ چیز آپ کے کنٹرول میں جو چاہے آپ کر لیں, گاڑی آپ کی اس کو جو چاہے دبا لیں, अरे भाई हदीस तो ये कहती है कि घोड़ा आपका है, ऊंट आपका है, पता है वो क्या मसला है हदीस का? खबरदार ऊंट पर बैठकर या घोड़े पर बैठकर तुमने कोई वहां खुतबा नहीं देना, कोई दीनी बात नहीं करनी, बात करनी है कोई दुनिया की किसी भी, उससे उतर के करना, क्योंकि ये सवारी के लिए बनाया गया है, तुम्हारी आयशाई के लिए नहीं बनाया गया। जिस ऊंट और घोड़े को इस्लाम यह हकूक देता है, हदीस सुनाइए मैं तो मुझे बताएं कि हम इंसान वैसे ही हैं जिसको चाहे जिस हाथ में ढांक दें, कोई हमारे कब्जे में आ जाए तो हम उसको रगड़ दें, उसको उसकी परवाह ना करें। अल्लाह का दीन है, उसने हर चीज के लिए कानून बनाया है, हर चीज के लिए कानून बनाया है, जो चाहे इसको करते हैं। हम ज्यादा ताकतवर हैं, हमारा पड़ोसी जरा बेचारा ढीला ढाला है, आगे कोई पूछने वाला कोई नहीं, खाली औरत है, जो चाहे तड़ी देते हैं हम उसको, कुंडी घड़का कहे तू ये तू शोर मचा रहा था तू, वो ऐसे होते हैं ना मोहल्ले के, ऐसी औरत है बस चढ़ गए फिर रहे जी हम दादा। तो ऐसे रमजान में तो भाई कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह के हकूक देखें, माशरे में रहते हैं, इसकी अहमियत भी इतनी है, चलना है फिरना है, लोगों से मिलना है, एक दुकान पे दो आदमी काम भी कर रहे हैं, दो साथ हैं भाई, एक दुकान पे दो आदमी काम भी कर रहे हैं, वहाँ भी चपलस हो जाती है, बोलचाल हो जाती है, आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ भी ऐसे बात बात हो ही जाती है, या अलग सलैक में दोस्तों में हो जाती है, और उसके बाद तो यह है कि घर का एक अंदर भी तो बीवी बच्चे हैं उनसे भी हो जाती है, और फिर सुलह रहमी सारी चीज़ें आती हैं, बहन भाई मामा चाचा रिश्तेदार ये सब बस बड़े जोश से कहते हैं बस ये छोड़ दिया चाचे को हमने तैसी की तैसी चीज, 5 साल हो गए हमने शक्ल नहीं देखी उसकी, अल्लाह अकबर, रमजान गुजार रहे हैं कहाँ, मदीना मुनव्वरा में। इस्लाम को पढ़ो, जब भी कोई कदम लेने लगो अल्लाह तौफीक दे, हर उम्रे करो हज करो, लेकिन जितनी बड़ी अल्लाह तौफीक दे रहा है उसको सोचो। ये रमज़ान की चंद तीन दिन मैंने बड़ी मुख्तसर बातें की हैं, आप सोच लें कि रमज़ान आने से पहले तैयारी कितनी करनी चाहिए, बस यही तो नहीं एतकाफ़ कर लियो, सजदे कर लीजिए, हम रमज़ान ले लिए, तरावी पढ़ो, चौड़ो फिर रहे हैं, रुकावट दूर की थी, रुकावटें हटाई थी रमज़ान से पहले, या ऊपर ही ऊपर रहा सारा मामला, सूरज ऊपर ही चमकता रहा, छत को गर्म करके चला गया, शाम हो गई, ऐसे होता ना सूरज चमक रहा छत गर्म हुई, अंदर तो आया ही नहीं, रोशनी नहीं आई अंदर, अंदर तो लाइटें जलानी पड़ी हमें, इतना बड़ा लाइट वाला जिसका कोई तस्वर ही नहीं कर सकता कि एक सुराख से वो पूरे घर को रोशन कर दे, सुराख भी नहीं था जिसमें से लाइट आए, तो क्या अमल करेंगे हमारे, क्या सजदे काम करेंगे, ये बहुत बड़ी रुकावट है जिससे हमारी झगड़ा हो, किसी से चपकुश हो गई हो, किसी से बात हो गई हो, किसी से होती है, हम इंसान है, तो अब हमने सोचना है, अभी 2 दिन बाकी हैं, 3 दिन बाकी हैं, सब कुछ छोड़ दें, लिस्ट बना लेंगे, भाई ये तो सबसे बड़ा काम था जो 2 दिन मैंने बताया, ये तो बहुत बड़ी काम है, तो किसी का तो मामला बनेगा नहीं, किसी का पैसा देना लेना, गाली देना, गलौज देना, माँ बाप से बेइज्जती करनी, बीवी बच्चों के हकूक न देना, किसी के साथ ज्यादती करनी, किसी साथ जुल्म करना, किसी जगह मस्जिदों में हो जाता है झगड़ा, बातचीत हो जाती है, अब इसके लिए क्या हाल है, एक कुरान की आयत जहन में आ रही है, बड़ी खूबसूरत आयत है, इसमें मज़मून को पूरा कर देगी अगर याद आ गई, हाँ वलमन सबरा वाफर, बड़ी खूबसूरत आयत है, अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं कि अब हमने ये नहीं सोचना, याद रखें कि यार इसने ज्यादती की हमारे साथ, हम खड़े थे हमारी बेइज्जती कर दी, इसने खड़ा होकर फला हमारा ये कर दिया फला कर दिया, कहता मजा तो इसी में है कि ज्यादती वो करे जुल्म वो करे माफी तू मांगे, क्या इस्लाम कि ज्यादती वो कर रहा हो जुल्म वो कर रहा हो लेकिन तेरा क्या काम है, हाँ वल्लम सब्र व गफर, कुरान क्या कहते हैं ज़ालिक अस्मुल अमूर, क्यों बोला ये आया था सही पढ़ो, हाँ कल सब बता, शायद एक लफ्ज़ बीच में निकल रहा है, तो क्या मज़मून कुरान ने दिया है, जब ऐसा मौका आ जाए तो ये मत सोचना कि जनाब यहां मैंने ये किया था मैं इसमें राइट बनता है, और शरीत ये करे खबरदार वक्त नहीं है इतना, कुरान की शायद को पढ़ लो, पढ़ लमन सब फल, इसमें एक और इनाम मिलता है, कुरान जो बता रहे हैं, इस आयत भी थोड़ी सी जहन में मेरी बात आई वो बताता हूँ, क्या भाई कि हमने नहीं सोचना कि इसकी जाति या मेरी जाति है, फलां की जाति इसके नहीं, बस पता है कि हमारे इसके साथ कुछ चल रहा है मामला, लैक्स लैक्स नहीं, तो हमारा क्या काम है कि फौरन जाके हमने झुकने और जाके कहना है कि भाई तेरा कसूर हो या मेरा कसूर हो, तेरी गलती हो या मेरी गलती है, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे, ये लफ्ज है वाला मन सबर वाह वाह, जो अपने आप को कंट्रोल कर गया सबर कर गया उसके जुल्म पर उसकी जातियों पर फकाफर अल्लाह और माफी भी मांग गया, अल्लाह ताला का हदीस सुनाते हैं, इस पर मुझे हदीस भी याद है, हदीस सुन ले हदीस में क्या कहा गया है कि जो शख्स ये अमल करता है अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला कहता है कि सुनो फिर मैं इनाम उसको क्या देता हूँ, नंबर एक उसकी इज्जतों को बुलंद कर देता हूँ। हम समझ में माफ़ी मांगे जाएंगे या नीचे हो जाएंगे, क्यों मालूम ऐसे ही है ना, यार इसके पास चले गए तो झुक गए यार, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी था, अल्लाह क्या करे माफ़ी तूने मांगी इज्जत तुझे मिल रही है। सुभान अल्लाह। अब फरमाया जो कुछ इसने तेरे साथ किया, दूसरा वादा अल्लाह पाक कर रहा है मैं तेरे इज्जत भी दूंगा, दर्जे भी बुलंद करूंगा, दूसरे क्या अल्लाह ताला कहता है मैं तेरी मदद भी करूंगा। ये बड़ा काम है भाई, इसमें दो काम मिल गया हमें, एक तो ये कि रमजान हमारा बन गया, बस सोच लो ये आखिरी टच जो कर लिया हमने, रमजान का आखिरी टच है ये, हिम्मत करके हम काम करेंगे कि भाई हाथ आगे बढ़ा दिया, अस्सलाम वालेकुम, किस तरह अल्लाह की खातिर में तुझसे माफी मांगता, बल्कि तेरी हो या मेरी, कसूर तेरा हो या मेरा हो, मैं जो करूँ मुझे माफ कर दे, बस हमारा इतना काम करना है। बहन भाई सब ये वो शोबाजियाँ जो है ना वो हमारे यहाँ नहीं चलती इस्लाम में, वो इतने दिन कट कर दिया फला कर दिया, ये तो पुराने जमाने नबी अकरम आने से पहले के वक्त के ये चक्कर हुआ करता था, जब आप तशरीफ ले आए तो सब मिट गए, वो खत्म हो गई सारी चीज़ें, ये कहाँ बाकी रही है, तो आप कहाँ से आ गई हैं, ये कहाँ से पैदा हो गई, सरकार जिनको तो मिटाने आए थे, तो दिलों को जोड़ने आए थे, किसी भाई के दिल में रंजिश कोई ना हो, इस तरह बिस्तर में जाए कि रंजिश ही ना हो। ये रमज़ान का बहुत आला अहम पहलू है, अगर ये काम कर लिया हमने भाई, सुन अगर ये काम कर लिया तो सुभान अल्लाह रमज़ान की रहमतें बरकतें बारिशें मगफरतें जितनी कुछ भी अल्लाह तमाम नेमतें जो कुछ अल्लाह ने दी हैं अल्लाह ताला की इन तमाम नेमतों की जो बारिश है अल्लाह के फजल से, उसके एक कतरे से भी इंसान महरूम नहीं रहेगा, एक एक कतरे से फैजयाब होगा अल्लाह के फजल से। तो ये काम हमें कर लेना चाहिए इंशाल्लाह, और क्या होगा अल्लाह अकबर, इस तैयारी के साथ, हर चीज़ की तैयारी थी ना, तो इस तैयारी के साथ हम रमज़ान में दाखिल हुए तो रमज़ान का पहले ही झोंका हमें बेड़ा पार कर देगा, पहले ही झोंके में बेड़ा पार हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और दोज़ख़ से हम बरी हो जाएंगे। ये है बातें जो दोस्तों करनी है अल्हम्दुलिल्लाह हमने, और अल्लाह ताला हमें रमज़ान नसीब भी फरमाए, कबूल भी फरमाए, और हमें हिम्मत भी अता फरमाए कि रमज़ान के अंदर हम टूटी फूटी जो इबादत कर सकें उसी इबादत को जारी फरमाए। और माशाल्लाह इस मस्जिद वालों का शुक्रिया करता हूँ, पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह में तो आने की इजाज़त दी और जिक्र की भी इजाज़त दी, इंशाल्लाह ज़िंदगी हयात रही तो इंशाल्लाह फिर ये सिलसिला जारी रहेगा, और रमज़ान के बाद फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। और सबसे तो गुजारिश है कि एक दूसरे के लिए दुआ करें रमज़ान के लिए, इस मस्जिद वालों से भी लिए, और अल्लाह ताला इस मस्जिद के काम में भी आसानी फरमाए, बरकतें नसीब फरमाए, और जो इस मस्जिद में खिदमत कर रहे हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की खिदमत को कबूल फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और ये इनके लिए आखरत का, उसके लिए, उसके माँ बाप के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके रिश्तेदारों के लिए ये सदका जारी है। Thank you.